आप सभी को इस व्यापार एवं इंडस्ट्री बिजनेस एंड इंडस्ट्री के कल के सत्र में आप हमारे भाई साहब एमएल शर्मा जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है उनके साथ साथ आप देख रहे हैं उनके दाहिने तरफ ब्रह्मा कुमारी योगिनी दीदी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है उसके पश्चात हमारी क्रीना दीदी है और उनके साथ साथ हमारे हरीश भाई जी हैं। आप सभी तीनों को मिले थे, योगिनी दीदी को कोई कार्यक्रम था जिसके कारण वो कल इनॉग्रेशन फंक्शन में नहीं आए थे। आज हमारी दीदी आए हैं और उनके चारों के अनुभव से आज जो पैनल डिस्कशन होगा आप सभी उसमें सही रीति से भाग लेंगे। आज मैं योगिनी दीदी का छोटा सा परिचय दूंगी। आप सभी वैसे जानते होंगे हमारी योगिनी दीदी सबसे प्रथम जो हमारा प्रोग्राम है बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। पिछले 52 वर्ष से दीदी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय में पूरे रूप से संपूर्ण रूप से योगदान दे रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करके समर्पित रूप में संपूर्ण रूप से योगदान दिया और काफी जो भी अलग अलग प्रोग्राम्स है उसमें योगिनी दीदी ने बहुत कुछ उनका योगदान रहा है। सबसे पहली बात तो ये है हमारा मुंबई विले पार्ला सब जोन जो है उसके वो डायरेक्टर हैं और उनके साथ साथ 22 सेंटर हैं जिसका संपूर्ण रीति से सुचारू रूप से दीदी आयोजन करते हैं, उसके संभालते हैं। उसके साथ साथ ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के वो ट्रस्टी हैं और बीएससीएस एमजी हॉस्पिटल के ऑनररी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर हैं और उसके साथ साथ वो एक ऑनररी रोटरियन क्लब ऑफ मुंबई एयरपोर्ट के ऑनररी मेंबर हैं। और आप सभी को बहुत खुशी होगी, आप सभी करतल ध्वनि कर सकते हैं, दीदी को हाल ही में मुंबई के मेयर ने वर्ल्ड वुमेन्स डे में उनको सम्मानित किया था। 1985 में दादी जी और दीदी के संकल्प से बहुत सुंदर पदयात्रा का उन्होंने आयोजन किया था बहुत सफलता रूप से, उसके साथ साथ कार यात्रा किया था। पैनल डिस्कशन का समय है, मैं बहुत समय नहीं लेते हुए दीदी के बारे में एक पंक्ति सुनाना चाहती हूँ। आप वो फूल हो जो गुलशन में नहीं खिलते, आप वो फूल हो जो गुलशन में नहीं खिलते, आप पे आसमान के फरिश्ते भी फकर करते, आप पे आसमान के फरिश्ते भी फकर करते, आप हद से ज्यादा कीमती हैं, हम सब आपके साथ रहे यूं ही हंसते हंसते। मैं समझती हूँ आप सभी भी यही चाहते हैं और पैनल डिस्कशन अभी शुरू करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। व्यापार से भी अतिरिक्त जीवन है, शायद कल शाम को भी इस थीम के बारे में थोड़ा बहुत आपने सुना और आज सुबह से कई सत्र चले और कई मेहमान भाई बहनों को मैं मिला और फिर भी लगा कि ये विषय इतना सरल नहीं है कि इसको स्वरूप में कैसे लाया जाए। बात करनी तो एक बात है लेकिन उसे स्वरूप में कैसे लाया जाए, और जैसे अभी आपने पंक्ति सुनी उसी में उसका सार है कि सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, लेकिन उस पायदान तक भी कैसे पहुंचे, प्रैक्टिकल में कैसे पहुंचे। और इसके लिए हमने सोचा कि हमारे सबसे अनुभवी जो पर्सनालिटीज है, हमारी व्यक्ति है, मदनलाल शर्मा जी है, योगिनी बहन है और क्रीना बहन है, तो उनके अनुभव से हम कुछ निचोड़ ले कि हम इसे कैसे अचीव करें, और वही ध्यान में रखते ही ये सत्र का हमने आयोजन किया कि व्यापार से भी अतिरिक्त जीवन हम जिए कैसे। और सच में ये जरूरी भी है, लेट्स हैव ए डेविल्स आर्ग्यूमेंट कि सच में ये जरूरी है। तो शर्मा जी, आप तो व्यापारी भी रहे और अब आध्यात्मिकता का बहुत ही गहरा अभ्यास भी किया है, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आपकी राय में एक व्यापारी को क्या व्यापार ही करना चाहिए? मैं समझता हूँ व्यापारी हो तो व्यापारी करो, है? दो घोड़ों पे क्यों सवार हो? और क्या व्यापार से ही जीवन है या जीवन से व्यापार है? आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या अनुभव रहा और आप क्या सलाह देंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स को?
ओम शांति। मैं समझता हूँ सब बहुत खुश होंगे। सब खुश है ना? हाथ उठे, सब खुश हैं। देखो, ऐसे वातावरण में आए हैं और दाता परमात्मा सबको खुशी बांट रहा है, और यहां से खुशी का स्ट्रोक लेके जाना, खुश रहना और खुशी बांटना, मैं समझता हूँ जीवन का सार यही है। हमेशा खुश रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, बाबा यही कहता है, ज्ञान यही कहता है। और चाहे आप बिजनेस करो, पैसा कमाओ, सार उसका है कि हमको खुश रहना है हर हाल में। और आध्यात्मिकता और बिजनेस दोनों ही जरूरी है। जब हमने शरीर लिया है, शरीर निर्वाह, तो कुछ करना ही पड़ेगा, और वो करना चाहिए। आप बिजनेस करते हैं, कोई सर्विस करता है, कोई कुछ करता है, और मैं समझता हूँ बिजनेस करना सबसे ज्यादा अच्छा है। और बिजनेस के अंदर आप अपने आप मालिक हो, किसी के नौकर नहीं है। फिर जब मालिक हैं तो मालिक होकर के हम उसको जैसे मर्जी चलाएं। उसमें सबसे बड़ा सार एक बिजनेस का हम प्रिंसिपल भूल जाते हैं, पैसा किस लिए कमाते हैं, पैसे का उपयोग क्या हुआ। उसमें पैसा ही रह जाता है उद्देश्य, पैसा पैसा, ये कर लूं, वो कर लूं, कंपटीशन में इसके पास इतना, उसके पास इतना, मेरे पास कितना, ये करना। वो ये नहीं सोचता कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं क्यों इसमें इतना इन्वॉल्व हो रहा हूं, क्यों इसमें बुद्धि लगा रहा हूं। देखो, गलती तो वही हो जाती है। अगर देखो आप, सारी दुनिया ही कर रही है ऐसा। उसको कहें क्यों कमा रहा, तेरे पास तो बहुत है, फिर भी वो कमाया जाएगा, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, कहेगा टाइम नहीं है। आज तो मैं बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जीवन में ये कहता है कि हमारी लाइफ बैलेंसिंग चाहिए। बिजनेस भी चाहिए, काम भी चाहिए, एक्टिव भी चाहिए, समाज में हमारी जिम्मेवारी है या घर की हमारी जिम्मेवारी है, पूरी निभानी चाहिए। उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि खुशी आप कैसी, शांत कैसे रह सकते हैं, आराम से कैसे रह सकते हैं, आनंद में कैसे रह सकते हैं। ये होगा आपके सोच से, आपके संकल्प से, आपके विचारों से। जब तक आपके विचार वैसे नहीं बदलेंगे कि मैं क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उसके लिए टाइम देंगे घंटा आधा घंटा। पहले जीवन में लोग आध्यात्मिकता में मंदिरों में या पूजा करते थे, और करते थे 10-11 बजे तक कुछ भी करते थे। आजकल तो लाइफ फास्ट हो गई, सुबह उठते टीवी देखते हैं, उसी चक्कर में बुद्धि चलती है हिसाब से। लेकिन इस आध्यात्मिकता से ही हम बच सकते हैं आज। ये मैं समझता हूं जीवन के लिए हतरे से जरूरी है, क्योंकि इसमें अपनी पहचान मिलती है, और अपनी पहचान से हमें क्या करना है, क्या ड्यूटीज है, वो ड्यूटी को भी समझ में आ जाती है। मैं तो ये समझता हूं कि यहां आने के बाद में, बाबा से मिलने के बाद में, ये शिक्षा लेने के बाद में, जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि हमें क्या करना है, क्यों करना है हिसाब से। और उसमें सफलता आपकी हर जगह समाई हुई है, क्योंकि आपको माइंड फ्रेश है, दिमाग फ्रेश है। वैसे भी कहते हैं, जहां सुमति वहां संपत्ति डाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। और सुमति तो एक सुमत श्रीमत को एक परमात्मा ही दे सकते। कुछ इस प्रिंसिपल अगर अपना लें, जैसे यहां है निश्चय बुद्धि है, मैं शुरू से निश्चय बुद्धि हूं कि परमात्मा का काम है। जब से आया हूं मैंने हर तरह से देख लिया कि परमात्मा का काम है। इसके बाद में कोई भी परिस्थितियां आती हैं, और आती हैं, तो वो कोई साइड एक सीन्स है, आते जाएंगे। लेकिन मेरा है कि मेरे को परमात्मा मिला हुआ है, उससे ज्ञान मिला हुआ है, उसके हिसाब से मेरे को लाइफ में चलना है। और उस तरह से चलते हैं, दृढ़ता भी होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि दृढ़ता होगी तो प्राप्ति जरूर होती है। बिजनेस में भी देखो आप कितना लगाते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, तब एक चीज मिलती है जो चीज इतना फायदा नहीं कर सकती, करती तो है लेकिन वो नुकसान ज्यादा कर जाती है बाद में लॉन्ग रन में जाकर के, उसके पीछे ही चलते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता उसको ये कंट्रोल करना सिखा देती है कि हम कैसे दुनिया में चले हिसाब से। निश्चय बुद्धि हो, बाबा कहता है ना सच्चे दिल पर साहिब राजी, दिल साफ तो मुराद हासिल हमारी सच्चाई होगी ना। परमात्मा के साथ भी बातचीत में भी, किसी व्यक्ति से नहीं कह रहा हूं, परमात्मा को तो आप साफ कह ही सकते हो ना। अगर वहां भी आप चालाकी से बात करें, होशियारी से बात करें तो ऊपर वाला भी देखता है ठीक है इसको कर लेने दो, ये होशियार है तो मैं क्या करूं। तो ये सरलता और निश्चय बुद्धि और दिल साफ वाली बहुत बड़ा काम करती है लाइफ में। हम कहें चालाकी से होशियारी से हो सकता है आप थोड़ा सफल हो जाओ, लेकिन आपका जीवन सफल नहीं होगा। जीवन सफल होगा सरलता से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे बातचीत से, जो वैल्यू की बात बताते हैं और बताते हैं। तो ये सारी चीजें मैं तो समझता हूं कि लाइफ में सबसे बड़ा आध्यात्मिकता बहुत बड़ी जरूरी है। आज मैं तो सारी दुनिया को देख रहा हूं किसका क्या हो रहा है, किसी के डायबिटीज है, किसकी क्या है, पैसा है, और है, सारा कुछ होते हुए भी, लेकिन बिचारे लगी हुई है आप में। तो मैं तो परमात्मा को, बाबा को धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरे को जल्दी पकड़ लिया। हालांकि मेरा बिजनेस शुरुआत थी उस समय, परिवार मेरा बहुत बड़ा, वाले चार लड़कियां थी, दो लड़के थे, और बिजनेस में इनिशियल स्टेज में था, मेरी उम्र भी 34 थी, आज 84 है। वहां उस समय बाबा ने ऐसा पकड़ा तो मैंने देखा यही काम है जो आगे ले जा सकता है। जीवन देखो ना आप, बहनों ने कितना जीवन दिया, बाबा ने कितना जीवन दिया है, कितना बाबा की अगर कहानी पढ़े ना आप, क्योंकि हम कहते हैं फॉलो फादर, एक बाप शिव बाबा ने प्रैक्टिकल में इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी शक्ति, आध्यात्मिकता का ज्ञान, उसको जीवन में धारण करना प्रैक्टिकल में, ये ब्रह्मा बाबा ने हमारे सामने रखा है। और मैं 4 साल तक उस व्यक्ति के साथ रहा जो मेरे को वो शक्ति आज तक काम कर रही है, उसके जीवन से बताया उसने। प्रैक्टिकल ज्ञान तो दिया ही, लेकिन उनका जीवन ही ज्ञान देता था, उनका बैठना उठना खाना पीना रहना व्यवहार बातचीत सारा विश्व के लिए थे, सभी आत्माओं के लिए उन्होंने किया। और उनका जीवन देखो कितना श्रेष्ठ, एकदम न्यारे प्यारे, ये भी नहीं उनको अभिमान मैं कर रहा हूं, नहीं, ऊपर वाला बाबा कर रहा है, कितने निर्माण थे वो। तो निरंकारिता बहुत जरूरी है। हालांकि बिजनेसमैन निरंकारी होते हैं जनरली, क्योंकि उनको तो पब्लिक से होता है, लेकिन यहां बाबा कहता है निरंकारी का मतलब क्या, फिर उसका और समझने की बात है। निरंकारी के तो हैं, लेकिन अपने ईगो भी होता है कि मैं ऐसा करता हूं। तो मैंने देखा कि प्रैक्टिकल है लाइफ में हिसाब से, अगर इसको अपनाते हैं तो आपका परिवार भी ठीक रहता है। तो परिवार से निरंकारिता से इससे व्यवहार करते हैं तो परिवार अपना साथ देगा, कहीं ईगो का काम नहीं, बच्चे भी साथ। मैं तो समझता हूं बच्चे वगैरह जब मेरे परिवार में, मुझे कहना ही नहीं पड़ता ये करना है, सब काम अपने आप ऑटोमेटिक होता है, आध्यात्मिकता का चाहे यहां का हो कुछ भी हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है इसके कारण से, फिर आपको मैं समझता हूं मेहनत नहीं करनी पड़ती, लोग आपका काम करेंगे अपने आप, बिजनेस भी लोग करेंगे, अपने आप को ऑपरेट करेंगे। लेकिन हम अपना जीवन तो ऐसा बनाए ना, हालांकि शुरू में हो सकता है ईमानदारी से और से आपको दिक्कत आएंगी, शुरू में होता है दिक्कत आती है, लेकिन बाद में अगर आपका एक पर्सनैलिटी इमेज बन जाता है कि यहां ये व्यक्ति तो बड़ा धार्मिक है, बड़ा अच्छा है, अच्छा व्यवहार में है, तो आपके सामने समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं तो हम ही क्रिएट करते हैं, हमारी गड़बड़ है वो सामने आ जाती है, बस हम ठीक है तो दुनिया ठीक हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी। तो मैंने तो इस दुनिया में बाबा के बनने के बाद में 50 साल में जो अनुभव कर रहा हूं, अत्यंत सुख में, जैसे खुशी में रहते हैं। बाबा कहते खुश रहो, बाबा का सिद्धांत बस हमेशा कोई भी परिस्थिति आए खुश तो रहो आप कम से कम, और हरेक को खुश रहने की कोशिश करो। बस घर में परिवार में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, समस्याएं तो आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन उनसे पुरुषार्थ करके हम आगे बढ़ने का काम। मैंने आज तक जीवन में देखा जो भी परिस्थिति आई वो परिस्थिति आगे बढ़ाने के लिए आई। अगर देखोगे उस समय तो देखते हैं क्या हो रहा है, ये तो अच्छा नहीं है, वो नहीं है, लेकिन रिजल्ट में देखेंगे ना, अरे ये तो अच्छा हुआ मान ली जीवन में। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, आप निराशा को ही छोड़ दो, आशा के दीप जलाते रहो, भगवान मिला यहां आने के बाद में, क्योंकि बाबा की जो कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, महान आत्माओं की भूमि है, इस भूमि का देखो, बाबा का जीवन देखो, हमारी बहनों का, कितनी बहनें आज चैलेंज कर रही हैं विश्व के आध्यात्मिकता को चैलेंज करें विश्व में और वर्ल्ड में, फॉरेन में देखो आप। तो इसलिए ये बहुत आपको जीवन में खुश रहने के लिए, शांति से रहने के लिए, ये समझेंगे मैंने पाना था सो पाया, ऐसा जीवन बिताएंगे। तो इसलिए मैं देखता हूं कि आप लोग आए बिजनेसमैन है, तो मैं तो फायदे का काम देख रहा हूं कि मैं तो अपने जीवन में इससे ज्यादा क्या फायदा होगा। और एक जो भी करते हैं, बाबा ने किया, देखो साकार बाबा ने किया, इतना मान लो बीज बोया, आज उस बीज का देखो कितना फल मिल रहा है सारे विश्व में, यही नहीं यानी फॉरेन कंट्रीज में भी और सारे विश्व में। देखो इन बहनों ने झंडा उठाकर कितना काम किया, दादियों ने कितना काम किया, पूरा जीवन दे करके आपके सामने है। अभी तो जब मैं आया तब तो बड़ा मुश्किल था, यूं कहते ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है, यूं उंगलियां करते थे जैसे कि मैं कोई गड़बड़ कर रहा हूं, लेकिन आज तो खुला खाता है हिसाब से कि कितना जीवन अच्छा बना रहा है। हम तो चैलेंज करते हैं चाहे परिवार का और देखो आकर के। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अभी तो आपको पका पकाया माल मिल रहा है, हलवा मिल रहा है, उसको खा करके तंदुरुस्त बन करके अपना जीवन सफल बनाने की कोशिश करिए और अपने जीवन को के द्वारा आपको भी दुआएं बहुत मिलेंगी। जीवन आप अच्छा बनाएंगे लोग दुआएं देंगे, खुश रहेंगे तो लोग आपके साथ जरूर रहेंगे, ईमानदार रहेंगे तो आपके साथ जरूर रहेंगे और आपको दुआएं भी देंगे। तो देखो डबल काम हो जाता, अपना भाग्य भी बना रहे हैं, भगवान भी हमारा साथ है और हमें दुआओं के द्वारा अपना, और आदमी कोई भी देखो दुआओं से खुश रहता है। परिवार में भी देखो आपको दुआएं मिलेंगी, घर वालों की तो आप ठीक रहेंगे, समाज में भी और में भी दुआओं का बहुत बड़ा काम है। और दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन भगवान ने दे दिया है, कर्म अच्छे करो और दुआएं प्राप्त करके अपना जीवन सफल करो। तो बैलेंसिंग मेरा मतलब है रह करके अपना जीवन सफल करो दोनों तरफ। ओम शांति।
शर्मा जी आप ये कहना चाहते हैं कि व्यापार और जीवन जीना दोनों को बैलेंस रख के चले और जीवन भी आध्यात्मिकता के आधार से चले तो व्यापार में भी सफलता होगी। ठीक है, एक सीख तो हमको मिल गई। अभी 10-15 मिनट पहले आपने योगिनी बहन का भी बायोडेटा पूरा परिचय सुना आपने, और शायद अगर आपने बहुत ध्यान से सुना होगा तो पिछले 40-45 वर्षों से समर्पित रूप से इस संस्था को वो अपनी आध्यात्मिक सेवाएं दे रही है, लेकिन साथ साथ में पिछले 12-15 वर्षों से वो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो भी बंबई में और वो भी छोटी मोटी नहीं, 125 बेड की हॉस्पिटल की वो ऑनररी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एक हिसाब से वो एक बिजनेस भी हो गया या डे टू डे कारोबार भी हो गया, तो शायद उनका भी बहुत ही गहरा अनुभव है कि ये दो को कैसे जुड़े और कैसे लाइफ को बैलेंस करें। तो मैं दीदी आपको पूछना चाहूंगा कि आध्यात्मिकता तो हमें वैल्यूज सिखाती है, जो राजयोग के आपके सुबह के सेशंस है वो पूरे राजयोग के सेशन का आप निचोड़ देखो तो उससे हम शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो आपके अनुभव से क्या हमें बता सकते हैं कि ये सब में से कौन सी वैल्यू या कौन सी शक्तियां या दोनों भी हमें ज्यादा मदद कर सकती है, जिससे हम व्यापार में भी सफलता पाए और जैसे शर्मा भाई ने कहा वैसे हम जीवन को भी संतुलित जीवन जिए और दोनों में बहुत ही अच्छी सफलता पा सके। क्या वैल्यूज क्या शक्तियां आप हमें आपके अनुभव से सुना सकती है?
ओम शांति। और एक बार बोलिए ओम शांति। बहुत अच्छा, देखकर बहुत खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा ग्रुप आया हुआ है और हमारे शर्मा जी ने तो बहुत अच्छा बताया बैलेंस। तो योग खुद ही एक शक्ति है और जैसे हम करते जाते हैं हमारे अंदर शक्तियां जो है वो बढ़ती जाती है। योग माना ही बैलेंस कहेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि जब हम बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेसमैन बिजी भी रहते हो, कभी कभी कोई कार्य करना होता है तो पहल भी करनी पड़ती है, रिस्क भी लेना पड़ता है, साथ साथ कभी कोई निर्णय तुरंत लेना होता है तो निर्णय शक्ति को भी डेवलप करना पड़ता है, परखने की शक्ति पावर टू डिस्क्रिमिनेट भी चाहिए कि कौन व्यक्ति हमारे सामने कैसा बिजनेस करने आया है या पार्टनर हमारा कैसा है, पसंद किसके पहले ये सब देखना होता है। तो ये सब शक्तियां जो है उनकी जरूरत मैं मानती हूं कि जरूरी है। तो सक्सेसफुल मैनेजमेंट हम कब कर सकेंगे, जब हमारे अंदर ये निर्णय करने की परखने की ये सब शक्तियां होगी, और इस शक्तियों को हम कैसे डेवलप करें। और बिजनेस में ये तो जरूरी है कि हम बिजनेस के साथ साथ अपनी वैल्यूज जिसको हम कहते हैं मूल्य, वो मूल्यों को भी हम कैसे बना के रखें, क्योंकि इसकी जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। देखो धन जो है वो तीन प्रकार से कमाया जाता है। पहला जो धन का प्रकार है वो यही है कि आपको भी फायदा हो, आपको घाटा ना पड़े और दूसरे को भी लाभ होवे। ये धन हम कहेंगे दूध के समान है। दूसरा जो प्रकार है वो ये है कि कभी कभी जो रीति और नीति है वो हमारी ठीक होनी चाहिए, परंतु कभी कभी लेन देन में हमारा जो न चाहते हुए भी व्यवहार का जो स्तर है वो कम हो जाता है, मूल्यों की कमी हो जाती है। तो ऐसा धन जो है वो पानी मिश्रित दूध के समान है। तो सुख और शांति जो है वो भी हमें उतने ही परसेंटेज में मिलती है। और तीसरा प्रकार का जो धन है वो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि इसने तो मेरे को धोखा दे दिया, मेरे को विश्वासघात कर दिया। तो ऐसा जो धन है वो सुखदायी नहीं, जिसको हम कहते हैं सात्विक नहीं है। तो हमें संतुष्टता जिसको हम कहते हैं वो जीवन में बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा रशिया का टॉल्स्टॉय करके फिलोसोफर हो गया, उसने बहुत अच्छा बुक्स में अपनी लिखा है कि एक जमींदार था, उसको लैंड लेना था, जमीन लेनी थी। तो वो एक ट्राइबल एरिया के हेड के पास बहुत थी, वहां गया कि मेरे को ये टुकड़ा तू दे दे। तो उसने बोला कि तेरे को इतना टुकड़ा मैं क्यों दूं, मैं तेरे को सब जमीन दूंगा, लेकिन तू ऐसा कर जब सूर्योदय होवे तू दौड़ना शुरू कर और जब सूर्य अस्त होवे उसके पहले वापस यहाँ पहुंच जाना। वो व्यक्ति को रात को नींद ही नहीं आई, अरे कब सूर्योदय होवे, कब मैं दौड़ू, इतनी जमीन मेरी हो जाएगी। तो उसने सूर्योदय होते ही दौड़ना शुरू किया, जो कोने कोने में कोई टुकड़ा देखता था वहां भी चला जाता था, वहां भी दौड़े, ये भी मेरा ये भी मेरा। और सूर्य अस्त हुआ उस समय वो पहले पहुंच तो गया, पर इतना एग्जॉस्ट हो गया कि वहां ही गिर गया, मर गया। तो इसीलिए जो जीवन में बताया हरीश भाई ने पूछा कि वैल्यूज, वो वैल्यूज हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसमें मैं कहेगी सबसे जरूरी पहली वैल्यूज है जिसको हम कहते हैं कि सहयोग, कोऑपरेशन, वो एक वैल्यू है। आप सहयोग दो और सहयोग सबसे लो, ये जरूरी है। माना हमेशा टीम स्पिरिट, आप जो भी चाहे बिजनेसमैन बैठे हो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी कार्य हमें करना है तो हमें टीम स्पिरिट से ही करना चाहिए। मैं अकेला करूंगा उसमें सफलता नहीं मिलती है। एक बहुत छोटी सी कहानी है कि एक बार ये पांच अंगुली आपस में लड़ पड़ी, तो इसने कहा मैं बड़ी हूं क्योंकि सबका मालिक एक। इसने कहा मैं तो हूं ही बड़ी, तो मैं बड़ी हूं। इसने कहा कोई भी अच्छा कार्य होता है तो ये अंगुली से होता है, स्वस्तिक करते हैं, तो मैं बड़ी हूं। इसने कहा श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठाया तो इससे उठाया, तो मैं बड़ी हूं। और इसने कहा कोई भी एग्रीमेंट तो मेरे बिगर होता ही नहीं, तो मैं बड़ा। अभी क्या करे, तो एक बड़ा थाल लाया और उसके अंदर बूंदी रखी और बोला चलो जो बड़ा है वो बनाओ लड्डू। कोई से नहीं हुआ, जब पांचों ने मिलके ऐसे किया तब बूंदी का लड्डू बना। तो ये क्या हुआ, सहयोग। भाई पांचों के सहयोग से हुआ ना। तो कोई भी कार्य करो तो टीम स्पिरिट, जिसको हम कहते हैं सहयोग, बहुत बड़ी वैल्यू है। उसी तरह से हम कहेंगे कि ह्यूमिलिटी, जिसको हम कहते हैं कि मानवता भी, नम्रता जीवन में बहुत जरूरी है। एक बार एक लाओस से करके चाइनीज साधु अपनी मृत्यु शैया पर था, तो उसके शिष्य ने उसको बोला कि हमको जाते जाते एक संदेश तो आप देके जाओ। तो उसने कहा देखो मेरे दांत है, तो उसने बोला एक भी दांत नहीं रहा हुआ है। तो बोला जीभ है, तो बोला है। तो बोला यही मेरा संदेश है, जो नम्रता है, जीभ फ्लेक्सिबल है तो वो रही। तो ये बहुत जीवन में नम्रता जरूरी है। उसी तरह से हम कहेंगे ऑनेस्टी, बिजनेस में भी बहुत जरूरी है ये वैल्यूज। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा, हमारे पास जब भी कॉन्फ्रेंस होती थी तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे कृष्णा आयर जी, तो वो उन्होंने एक बार बहुत अच्छा हमको सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टी के ऊपर, ये वैल्यू पर, कि एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स के लिए दो स्टूडेंट जा रहे थे, तो उनको लेट हो गया एग्जाम देने में। तो उसके प्रोफेसर ने पूछा आप लोग लेट क्यों आए, तो एक ने बोला कि मेरा जो गाड़ी का ये था ना पहिया, उसका पंक्चर हो गया। दूसरे ने भी बोला पंक्चर हो गया, तो बोला अच्छा कोई बात नहीं। दोनों को अलग अलग रूम में उसने बिठा दिया। फिर एक को पूछा कि कौन सी साइड का था, तो उसने बोला राइट साइड का था। दूसरे को पूछा अलग रूम में कौन सी साइड का था, उसने बोला लेफ्ट साइड का था, तो वो समझ गया। तो इसने बोला आपको तो बड़ा बिजनेसमैन बनना है, और अभी से आप ऐसे करेंगे तो आप बड़े अच्छे बिजनेसमैन कैसे होंगे। उन्होंने समझाया कि जीवन में ऑनेस्टी जो है, सच, वो बहुत जरूरी है, तब आप सफल हो सकेंगे। परंतु हम आज देख रहे हैं, जैसे आजकल की रीत, वो भी कृष्णा आयर जी ने ही, उनके मुंह से ही हमने सुना था कि एक बार इलेक्शन हो रही थी, तो इलेक्शन जैसे अभी चलती है, तो एक पार्टी ने आके 1000 रुपया खिलाया एक व्यक्ति को कि तू मेरे कोई वोटिंग करना। फिर दूसरी पार्टी आई, उसने उसको 500 रुपया खिलाया कि मेरे कोई तू वोट देना। तो एक दूसरे आदमी ने पूछा आखिर तेरे को एक ने 1000 रुपया खिलाया, एक ने 500 रुपया तेरे को दिया, तूने वोट किसको दिया। बोला मैंने 500 रुपया वाले को दिया। बोला क्यों, बोला वो कम करप्टेड हुआ ना। तो ऐसा है, परंतु है तो वैल्यूज नहीं ना। तो ये ऑनेस्टी जो है वो जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। उसी तरह से हम कहते हैं कि लव, ये भी एक वैल्यू है। हम ये संस्था ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है, उसका बेस हमारा, जैसे कोई कहेंगे ना मंत्र हमारा बेस है, लिटरेचर हमारा बेस है, इस संस्था का बेस है प्रेम। जैसे बताया हमारे शर्मा जी ने कि ब्रह्मा बाबा ने सबको प्रेम से चलाया, हमारी दादियां भी हमको बहुत प्रेम से चलाती है। तो प्रेम जो है वो जीवन में बहुत जरूरी है। उन्होंने परिवर्तन सबका कैसे किया, ऐसे करो ऐसे नहीं, परंतु जैसे अभी शर्मा जी ने सुनाया, इस तरह प्रेम से सबका परिवर्तन किया। तो ये भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। उसी तरह से हम कहेंगे रिस्पेक्ट। हमेशा ब्रह्मा बाबा कहते थे कि बड़ों को रिस्पेक्ट दो और छोटों को प्यार से चलाओ। तो ये रिस्पेक्ट जो है वो भी एक बहुत बड़ी एक वैल्यू है। इसी तरह से हम कहेंगे कि टॉलरेंस, सहन करने की शक्ति, टॉलरेंस। आज देखो एक सहन करने की शक्ति या टॉलरेंस पावर नहीं होने के कारण एक भाई भाई भी अपने बिजनेस से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं ना। कभी-कभी हम कहते हैं कि हमने 9 बार तो कंट्रोल किया लेकिन हमको 10वीं बार है ना गुस्सा आ जाता है माना क्या हो गया सहन करने की शक्ति की कमी है तो ये सब शक्तियां कहो कि आप वैल्यूज कहो वो हमारे जीवन में जरूरी है आप सब में आप बड़े सब बिजनेसमैन बैठे हैं हमारे यहां भद्रेश भाई मुकेशा भाई हमारे ये बैठे हैं सामने सभी तो अतुल आपको परिचय सुन जगदीश भाई भी बैठे हैं आप जरूर उनके अनुभव सुनेंगे सबके तो मैं तो यही कहूंगी कि व्यक्ति या कोई भी बिजनेसमैन है वो ऐसे ही बड़ा नहीं हो जाता है अभी मैं ये सवाल तो फिर टाइम होता जाता है पर मैं एक और सुना के पूरा करेगी हमारी दादी जी हमको ये कहानी सुनाती थी प्रकाशमणि दादी जब हमारे पास आती थी तो एक बार सुनाई कि देखो व्यक्ति ऐसे बड़ा नहीं हो जाता है या बड़ा बिजनेसमैन तो एक दही बड़े की कहानी हमको सुनाई थी तो याद आई अभी कि वड़ा बड़ा कैसे बना तो वड़ा दही बड़ा तो मालूम है ना आप लोगों को तो उसने कहा उसने अपनी कहानी कही कि मैं वड़ा बड़ा कैसे हो गया मैं तो एक छोटे से खेत में था लेकिन मेरे को एक ट्रैक्टर आया और मेरे को उन लोगों ने काट के उसमें डाल दिया रास्ता तो इतना खाबड़ खुब्बड़ वाला था परंतु मैं क्या करूं मैं सहन करता ही रहा किसको मैं बोलूं और चुपचाप मेरे को वो लोगों ने एक वहां ग्राहक दुकान वाले के पास मेरे को छोड़ दिया अच्छा फिर दुकान वाले के पास से एक ग्राहक आया मेरे को लेके गया इतनी ठंडी की रात थी इतनी ठंडी थी मेरे को पानी में डाल दिया सारी रात तो मैं पानी में ध्रुजता ही रहा लेकिन सहन करता ही रहा मैं किसको बोलूं अच्छा फिर उसने कहा कि बाद में मेरे पर और भी नहीं दया आई तो सुबह मेरे को मेरे दो फाड़चे किए पहले तो मिल में उसके बाद फिर मेरे को मिक्सर में पीस डाला मैं तो सहन करता ही रहा फिर और नहीं दया आई तो मेरे को गरम तेल के अंदर डाल दिया फिर भी मैं सहन करता ही रहा फिर मेरे को जब पानी में डाल के दही में डाला तो वड़ा बड़ा हो गया तो वड़ा ऐसे तो बड़ा नहीं हुआ ना तो टॉलरेंस पावर ये एक वैल्यू है सहन करने की जो शक्ति है उनकी भी बहुत जरूरत है तो ये वैल्यूज को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो जरूर हमें अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त होती है लेकिन उसके लिए भी हमको दृढ़ता चाहिए दृढ़ता सफलता की चाबी है कहा जाता है कि डिटर्मिनेशन इज द की ऑफ सक्सेस तो ये सब वैल्यूज को धारण करने के लिए हमें अपने अंदर दृढ़ता की शक्ति जो है उसको पहले अपनाना है ओम शांति
धन्यवाद योगिनी मैन शायद आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि बहुत खूबी से उन्होंने अपना अनुभव का निचोड़ दे दिया और कहा कि प्रेम रिस्पेक्ट दृढ़ता नम्रता ऑनेस्टी सत्यता ये सभी वैल्यूज सफलता के लिए चाहिए और साथ साथ में निर्णय शक्ति परख शक्ति सहयोग की शक्ति और लास्ट में सहन शक्ति ये सभी होने से हम व्यापार भी कर सकेंगे जीवन भी जिएंगे और दोनों के अंदर में सफलता पाएंगे तो शर्मा जी एक बहुत छोटा प्रश्न पूछना चाहूंगा प्रैक्टिकल में ये सब क्या आप कर पाए क्योंकि पहला प्रश्न शायद मेरे मन में भी आया शायद और कईयों के मन में भी आएगा कि एक साथ में ये कर पाना मुमकिन है
आध्यात्मिकता द्वारा जैसे ज्ञान परमात्मा का हमको मिलता है उस ज्ञान के द्वारा जब हमको अपना परिचय पूरा मिल जाता है कि मैं कौन हूं मेरी ड्यूटीज क्या हैं मुझे क्या करना है और परमात्मा की याद अभी क्या है कि यहां पर जैसे हम कहते हैं भगवान बाबा शिव बाबा आया हुआ है और उसको याद करना है तो उसकी याद के द्वारा और हमारी पूरी जानकारी के एक परिचय हमारा मिल गया शरीर नहीं है हम आत्मा है उसके बाद में ऑटोमेटिकली आत्मा का एक अपने आप ही होता है कि मैं क्यों ऐसे करूं गड़बड़ क्यों फालतू चीजों में जाऊं क्यों झूठ बोलूं क्या करें क्या फायदा होगा उसको ये धारणाएं भी मैं समझता हूं स्वाभाविक रूप से हो जाती है इतना प्रेशर नहीं है कि मैं सहनशील क्यों बनूं। परमात्मा कहता है सहनशील बनो, और सहनशील बन के देखो आपको बड़ा मजा आता है, खुशी होती है। उसके बाद में सहनशीलता के बाद में किसी के चाहे क्रोध कर रहा है आप सहनशील हैं, आपको खुशी होगी, वो परेशान ज्यादा हो जाएगा। तो ये गुण ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली आपको आगे बढ़ाते हैं, आप अपने आप ही स्वतः करते हैं। मैं समझता हूँ इस साधना के मार्ग में, और यहाँ जो रोज हमारा बाबा की मुरली होती है, संपर्क संबंध में आते हैं, बहन भाइयों से आते हैं, तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली उस हिसाब से होते हैं। मैं तो आपको बताऊं, बाबा के साथ में 4 साल रहा, बाबा का जीवन प्रैक्टिकल में देखने के बाद में मैं नहीं समझता, मेरे को अपने आप ही आ गए सारे। मान लिया मोल्डी नेचर होनी चाहिए, नहीं तो मान लिया अहंकार होता है, मैं कौन है क्या है हिसाब से। बाबा कैसे रहता था, ब्रह्मा बाबा ने सैंपल रूप में रखा है निरंकारी में, और मैं सब गुण उसमें थे। तो इसके कारण से क्या था, संपर्क संबंध में आने से भी आपको, यहाँ भाइयों बहनों के संपर्क में भी आने से, क्योंकि मेरा जीवन ऐसा है, तो जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ देखेंगे ना तो भी सहज हो जाता है हिसाब से। तो आप इसको कठिन नहीं समझो, इतने बड़े हैं हम कैसे करेंगे क्या करेंगे, हम तो नहीं बन सकते, क्रोध में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सहनशील नहीं बन सकते। आसान हो जाता है जब आपको ज्ञान मिल जाता है, मैं क्यों करूं, और सहनशील उसमें आपको आनंद आएगा देखने के लिए। तो ये मैं समझता हूं कि आपको पुरुषार्थ जो दृढ़ता की बताई ना, आप थोड़ा सा दृढ़ता रखो, बाबा के साथ में पूरा निश्चय बुद्धि रखो, तो देखो आप जीवन में ऐसा आनंद लोगे इस कलयुग के वातावरण में कि आ गया। जैसे मैं समझता हूँ कि बाबा कमाल कर दिया इस हिसाब से कि हमारा जीवन कैसे बना दिया, हमारा जीवन नहीं बना दिया, परिवार का बना दिया, आसपास के लोगों का बना दिया, कहीं को प्रेरणा का स्रोत बना दिया। तो इसलिए यहाँ ये नहीं सोचना नहीं ये तो मुश्किल है, ये कैसे होगा, बहुत आसान है ये मान के चलो। आप थोड़ा सा निश्चय करके देखो, दृढ़ता की जैसे बात बताई और वैल्यूज की जो बात बताई, ये जीवन में होने चाहिए, और उसी से प्राप्ति होती है और उसी से खुशी मिलती है और उसी से बैलेंसिंग लाइफ होती है। तो मैं समझता हूँ आपने जो बताया, उदाहरण भी दिए, उसके हिसाब से आपने सहज समझ लिया कि जरूरी है। और इस साधना के मार्ग में फिर छोड़ना कुछ नहीं है, आपको घर में रहना है, ये भी नहीं है क्या है भाई हमको जंगल में चले जाएंगे संन्यास, परिवार में रहना है, बाप को याद करना है और अपना पालना करना बहुत ईजी है। मैं तो ये समझता हूँ अपने अनुभव के आधार पर। तो इसलिए आप उसको जरूर थोड़ा सा परिचय करके और अपना संपर्क जरूर रखें, संघ का असर पड़ता है ना, जैसे ऐसा संघ करेंगे उसमें सारा अपने आप सहज हो जाएगा। तो इसलिए बाबा सहज भी बनाता है, क्योंकि बाबा देवता बना रहा है हमको, मनुष्य से देवताओं में सारे गुण होते ही हैं ये, तो जब देवता बन जाएंगे तो गुण आ ही जाएंगे, देवता की तरफ चलने के लिए ये सबसे अच्छा रास्ता है मेरी। ओम शांति।
धन्यवाद शर्मा जी, नसीहत तो हम सुन ली, लेकिन ये सबका रास्ता क्या है और मार्गदर्शन हमें कौन देगा, कैसे देगा, और इस सभी चीज को हम हासिल कैसे करें। आप सभी यहाँ अपना बहुत ही अमूल्य समय लेके यहाँ आए हैं और बहुत ही ध्यान से रुचि से सुन रहे हैं, तो मैं कृणाबेन जी को पूछना चाहूँगा कि शर्मा जी शायद उनके जमाने की बात कर रहे हैं, मैं मेरे जमाने की बात करूं आपके बिजनेस की, कि बिजनेस में काफी तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, काफी इरिटेशंस भी रहते हैं, कई चीज हम नहीं करना चाहते लेकिन उसके ऊपर बहुत ही प्रेशर रहता है, काफी कॉम्पिटिशंस भी रहती है और काफी लिमिटेशंस भी रहती है, जगह की होती है, फाइनेंस की होती है, मैन पावर की होती है, कई टैक्सेस की समझ की होती है, हर रोज बदलते रूल्स रेगुलेशंस की होती है, तो ये सब में आध्यात्मिकता हमें कहाँ उपयोगी होगी, नंबर वन। एंड नंबर टू, उसका रोड मैप क्या है, बिकॉज ये तो सब चलते ही रहेगा, स्ट्रेस अगर ज्यादा है कल शायद कम भी हो गया तो रेगुलेशंस बढ़ जाएंगे या लिमिटेशंस बढ़ जाएंगे, तो ये तो कॉन्स्टेंट चेंज है, बट आप हमें कोई रोड मैप दिखा सकते हैं, यहां से हम जब वापस जाए तो हम उसके ऊपर कैसे काम कर सके जिससे हम हमारा जीवन संतुलित कर सके, जो हमें शर्मा जी ने भी बताया हम करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें, उसका क्या मार्गदर्शन आप दे सकते।
ओम शांति। हम देखते हैं कि जितना हम प्रकृति के नियमों के साथ साथ चलते हैं उतना स्वतः हमारे जीवन में सुख शांति संतुलन हर एक प्रकार के मूल्य को सहज रीति से जीवन में ढालना सहज होता है। लेकिन जब हम प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं और हम अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करके हम कुछ न कुछ नया लाना चाहते हैं पाना चाहते हैं और उसी लक्ष्य के पीछे दौड़ने लगते हैं अर्थात अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति के पीछे दौड़ने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो नेगेटिव है वो आनी ही है। लेकिन प्रकृति के दो नियम हैं। एक है कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। हम अगर कहते हैं कि स्ट्रेस के बगैर बिजनेस हो ही नहीं सकता तो कहीं ना कहीं हम ये गलत धारणा लेकर के चलते हैं। तो प्रकृति का नियम है अगर मैं करना चाहूं तो प्रकृति भी मुझे मदद करेगी मेरी जीत जरूर है। लेकिन किस में? कि जिसमें शांति है सुख है आनंद है प्रेम है इस प्राप्तियों के लिए प्रकृति भी साथ देती है। दूसरी बात यह है कि जो भी चल रहा है समझो कंपटीशन का पीरियड चल रहा है जरूरी नहीं है कि वो चलता ही रहेगा। एक समय था जब कंपटीशन बिल्कुल नहीं थी अब एक समय है जब एकदम पूर्ण रीति से कॉम्पिटिटिव फील्ड है पर फिर एक समय आएगा जब ये भी परिवर्तन हो जाएगा। क्या हमें इस चीज का ज्ञान है कि जो अभी हो रहा है वो थोड़े समय के बाद ऐसा नहीं रहेगा अपने आप बदल जाएगा। अब इसमें दो प्रकार के व्यक्ति है एक जो ये नहीं समझता है वो समझता है शाश्वत ये चलता ही रहेगा इसीलिए वो अपने लाइफ में स्ट्रेस को बढ़ाते ही रहते हैं क्योंकि वो समझते ही ऐसा ही है। कंपटीशन को भी भले अनफेयर हो तो भी उसको उसी रीति से चलाता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो सोचता है कि आगे चल के ये चीज नहीं होगी ये भी बदल जाएगा तो वो क्या सोचता है कि मैं अपने आप को समय के पहले बदल दूं। वो परिस्थिति को आगे नहीं रखता है स्वयं को रखता है और स्वयं को कैसे बदले ताकि भविष्य में जो समय आएगा उसके लिए वो अपना पात्र पहले से ही तैयार कर दे। तो जिस रीति से बिजनेस आज चल रहा है बहुत जल्दी उसकी पूरी रीत बदल जाएगी। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमें ऐसे विजन दिख रहा है भविष्य का कि एक ऐसा समाज आएगा जिसमें ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन या स्ट्रेस की आवश्यकता ही नहीं होगी और सभी अपनी ही कलाओं के द्वारा अपनी ही विशेषताओं के द्वारा एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे। मैंने अभी भी सुना है कि एक गांव ऐसा है भारत में जहां पर पैसों की लेन देन नहीं होती है। एक परिवार जो कुछ बनाते हैं वो दूसरे परिवार के साथ अपनी शेयरिंग करते हैं। क्या ये चीज भविष्य में सारे विश्व की एक प्रथा बन सकती है? है अपने ऊपर। भगवान ने हमें मन बुद्धि और संस्कार ये तीनों का ज्ञान दिया है। अब हम कहां तक इन तीनों का पॉजिटिवली और पावरफुली इस्तेमाल करते हैं इस पर सारा आधारित है। योग और आध्यात्मिकता और कुछ नहीं है पर अपनी इन तीन सूक्ष्म इंद्रियों को बहुत विशाल रूप से और शक्तिशाली रूप से प्रयोग करें अपने हर कर्म में, फिर भले वो बिजनेस हो या जीवन का दूसरा कोई हिस्सा हो। पर इन तीनों जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, हमारे तीन शस्त्र हैं, जिसका अगर आपने दुरुपयोग किया तो उतना नुकसान भी होता है, क्योंकि कर्म किसी को भी छोड़ता नहीं है और कोई भी मनुष्य आत्मा कर्म से भाग नहीं सकता, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसे रिटर्न में आएगा ही। एक छोटी सी बात सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति अपने घर से पत्नी से लड़ करके एकदम गुस्से में बाहर निकले अपने ऑफिस में जाने के लिए, और जब ऑफिस पहुंचे तो वहां उनकी सेक्रेटरी पर भी कोई भी कारण के बगैर गुस्सा उतारने लगे, तो सेक्रेटरी का भी मूड ऑफ हो गया और उनको भी मन नहीं लगा काम करने में कि क्या बिना कारण से मुझे लड़ रहे हैं। और फिर वो भी हाफ डे करके घर चली गई। घर चली गई तो उनके जो बच्चे थे उनकी एग्जाम्स चल रही थी और वो लोग एकदम माँ के पास आकर कहने लगे, माँ मुझे तो आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। अब वो आई भी गुस्से में थी और परीक्षा थी बच्चों की, तो एकदम जोर से चमाट मार दिया, आइसक्रीम खाना है, चुप बैठो, पढ़ाई करो, ऐसे करके सारा गुस्सा बच्चों पर उतार दिया। अब बच्चे कहाँ गुस्सा उतारे, तो इसलिए वो लोग घर के बाहर गए तो वहाँ कुत्ते भौंक रहे थे, तो बच्चों ने पत्थर उठा उठा कर कुत्तों पर बरसाए, क्योंकि उनको लगा यही रीत है गुस्सा उतारने की। और जो कुत्ता था वो भी चिल्ला चिल्ला कर भागने लगा। वहीं पर गेट पर एक गाड़ी आई, एक व्यक्ति उस गाड़ी में से बाहर उतरा और कुत्ते ने अपना गुस्सा उतारा काट के। और पश्चात वो व्यक्ति कौन था? वही बॉस जो अपने पत्नी से लड़के निकला था। कितना जल्दी वापस उसे वही एनर्जी उसके पास पहुंच गई, जो एनर्जी उसने निकाली थी वही एनर्जी उसके पास पहुंच गई। यही कर्मों की गृह गति है कि हम जो भी कर्म का बीज बोते हैं उसका कहीं ना कहीं हमें जरूर उसका फल मिलता है। इसीलिए ये संदेश है कि जो करना है सो आज करें। एक डिसीशन लीजिए, एक चॉइस लीजिए कि मुझे अपने को किस रीति से परिवर्तित करना है। एक बार आपने डिसीशन ले लिया कि मैं ये हूं, और फिर जैसे दीदी ने कहा कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, अगर वो आपने डिसीशन लिया मुझे खुश रहना है, मुझे शांत रहना है या मुझे सुखी रहना है, तो आपके हर कर्म आपके उस निर्णय के आधार से चलेंगे ही, आपके अन्य संकल्प भी इसी निर्णय के आधार से चलेंगे। और ये गारंटी है परमात्मा की शक्ति की ऐसी मदद मिलती है अपने संकल्पों को कि हमें सफलता मिलेगी ही। इसके लिए हमें न स्ट्रेस की, न कंपटीशन की, न इरिटेशन की, न कोई लिमिटेशन की, हमें कोई भी ऐसी कमजोरी का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा निजी अनुभव है। ओम शांति।
बहुत खूब ग्रीनाबेन, आपने तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और क्लियर कर दिया, और साथ साथ में संक्षिप्त में युग्रीबेन आपसे भी आपके विचार जानना चाहूंगा कि यही कि व्यापार के अतिरिक्त जीवन आप क्या कहना चाहेंगे आध्यात्मिकता की दृष्टि से।
वैसे तो ये डायलॉग का थीम ही है लाइफ बियॉन्ड बिजनेस, व्यापार के अतिरिक्त भी और जीवन है, और वो जीवन क्या? आप बिजनेस करते हो, उनके साथ आपका परिवार भी है, साथ साथ में हेल्थ को ठीक रखना भी जरूरी होता है, और साथ साथ जो मैं कहेंगी कि आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी भी जरूरी है, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो इंडस्ट्री चलाते हो तो आपको तीन पावर की जरूरत रहती है, ठीक है ना। वो कौन से तीन पावर? एक तो पहला इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। इलेक्ट्रिक पावर बिगर आप कुछ कर नहीं सकेंगे, आपकी फैक्ट्री कैसे चलेगी। दूसरी है मनी पावर। मनी पावर नहीं होगी तो आप माल कैसे खरीदेंगे, पगार सबको कैसे देंगे, तो मनी पावर भी चाहिए। तीसरी पावर है मेन पावर, वो भी जरूरी है, क्योंकि आपको अच्छे मैनेजर चाहिए, आपका सारे इतने मशीन है उनको चलाने वाले भी चाहिए, तो मेन पावर भी जरूरी है। परंतु इन तीन पावर के अलावा भी ये जीवन को चलाने के लिए एक चौथी पावर भी है, वो जो अभी बताया गया कि वो है स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति। मैं आपको अनुभव से बताऊं कि हमने सबसे पहला इंडस्ट्रीज में प्रोग्राम शुरू किया हैदराबाद में, नागार्जुना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से, तो एक प्रोग्राम था और केवी के राजू जो उनके डायरेक्टर थे, एमडी थे, वो हमारे बाजू में थे और उन्होंने देखा कि ये बहनें बहुत अच्छा करा सकती है, तो उन्होंने तुरंत मेरे को निमंत्रण दिया कि आप हमारे इंडस्ट्रीज में प्रोग्राम करने आओ। तो मैंने कहा कि हम तो बहने हैं, हम कॉन्फ्रेंस करने तो बिजनेस विंग की ओर से आए हैं, पर हम रोज क्या करेंगे प्रोग्राम। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आपको बेंजी पता नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर मेडिटेशन की बहुत ही आवश्यकता है। और सचमुच जैसे हमारी दो बहनें, एक रीना बहन बैठी है, उषा बहन से भी आप मिले, हमने ये दोनों बहनों को पहले भेजा। और मैं आपको बताऊं कि ये इतना अच्छे प्रोग्राम चले और इतना अच्छा कंपनीज में फायदे हो गए कि आपस में उनके अंदर प्रेम, विश्वास, एक दो में स्नेह, सहयोग की भावना, पारिवारिक भावना जो है वो बनती गई। और सर एक बार वहां के ही एक मैनेजर ने अनुभव सुनाया, क्योंकि हम मैसेज फॉर द डे रोज भेजते हैं जो टेबल पर होता है, तो जैसे पहले कोई ऑफिस में आते, आप लोग भी अपने वहां ऑफिस में इंडस्ट्रीज में कर सकते हो, तो वो मैसेज सब पढ़ते हैं पहले गोल्डन थॉट्स और फिर काम शुरू करते हैं। तो दोनों ने पढ़ा, लेकिन आपस में कुछ मन मुटाव हो गया था, तो उस दिन उन्होंने सुनाया कि हमारी बहुत बोलाचाली होने वाली थी, लेकिन जैसे हमने ये मैसेज पढ़ा तो हमने आपस में नहीं किया, अनुभव सुनाया। दूसरा अनुभव मैं आपको ये बताऊं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कोर्स किया दिल्ली में, और फिर 7 दिन का, और फिर उसने अपने सारे एम्प्लॉई को भी कराया। फिर जब उनके एम्प्लॉई वर्कर, हमारे जो चेयरपर्सन है अभी आने वाले है, दादी गुलजार, हृदय मोहिनी दादी जी, तो वो दादी जी को जब सारे वो इनके एम्प्लॉइज मिले तो दादी जी को कहने लगे कि दादी जी आप हमारे बॉस को बोलो, मालिक को बोलो, वो रोज सेंटर पर आवे। तो दादी जी ने उनको कहा आप अपनी बात सुना हो आपके लिए कि आप लोग आओ, पर आप उसके लिए क्यों कह रहे हो। तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि दादी पहले वो चक्कर लगाने, राउंड मारने आते थे हम लोग काम करते वहां, तो हमको लगता था अरे रे कोई काल हमारे पास आ गया, और अभी वो चक्कर लगाने आते हैं तो हमको लगता है राम आ गया है, तो हमारा बाप आ गया। तो ये कितना डिफरेंस। तो ये आध्यात्मिक शक्ति जो है, हाँ, वो जब हम अपने ऊपर प्रैक्टिकल में लाते हैं तो हमको अपने जीवन में हमारे संस्कारों का, जिसको हम कहते हैं, परिवर्तन हो जाता है। कभी बोसीसम के संस्कार, कभी हम कहते हैं ना ऐसा डोमिनेटिंग नेचर, बहुत है संस्कार हमारे बहुत है, लेकिन इस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए, इसीलिए हमें राजयोग की आवश्यकता है, जो आपको हमारी बहनें सुबह को भी कराती है। क्योंकि आप देखिए उद्योग शब्द है ना, हम इंडस्ट्री माना क्या कहते हैं, उद्योग, तो उद्योग के अंदर योग शब्द समाया हुआ है, इसीलिए योग के बिगर उद्योग अधूरा ही है, बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम इंडस्ट्री शब्द हम कहते हैं ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इंडस्ट्री माना आई फॉर इंट्रोवर्डनेस, सदा हमें जीवन में अंतर्मुखता में रहना है, तो हमारी काम करने की जो कार्यक्षमता है वो बढ़ जाती है, और जब हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है तो हमारा उत्पादन बढ़ता है, और उत्पादन बढ़ता है तो आपको भी फायदा, देश को भी फायदा। सबको फायदा हो जाता है. फिर एम फॉर नोबल बिहेवियर, हमेशा हमारे अंदर हमारी जो व्यवहार है, व्यवहार शुद्धि बोलते हैं, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. फिर डी फॉर डिविनिटी, दिव्यता, दिव्य गुण जो है वो हमें जीवन में धारण करना है. फिर यू फॉर यूनिटी, एकता, संगठन की शक्ति, वो तो हमने सुना. फिर एस, एस फॉर स्वीटनेस, हमें सदा मीठा बोलना है. देखो कमान से हम कहते हैं ना, एक बार तीर निकला तो निकला, वापस नहीं आता है, तो किसी को लग जाता है ना, तो ये भी जरूरी है स्वीटनेस. फिर टी फॉर ट्रस्टीशिप की भावना, और आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लास्ट में फिर वाई आता है, वाई फॉर योग. तो योग जो है वो जीवन में बहुत बहुत जरूरी है. और अभी हम थोड़ा समय के लिए योग का अभ्यास करेंगे. योग ही सर्व समस्याओं का समाधान है. तो आप जरूर आप आए हैं तो आपको प्रैक्टिस भी कराते हैं. हमारी बहनें शिविर भी सुबह को करा रही है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं, तो जैसे हम कहते हैं, योग शब्द बहुत मधुर शब्द है. सुनते ही मनुष्य का मन उठकर परमात्मा के पास पहुंच जाता है. जैसे हम वियोग अलग हो जाना, योग माना जोड़, संबंध, मिलन, पन किसका किसके साथ. वैसे तो बहुतों का बहुतों से संबंध है, माँ का बच्चे के साथ होगा, मित्र का मित्र के साथ होगा, परंतु आत्मा का, जो परम आत्मा के साथ संबंध जोड़ना, जिसको हम राजयोग कहते हैं. राजयोग, योग एक ऐसी फिलॉसफी है जिसको समझने से हमारा जीवन दर्शनीय बन जाता है. योग एक ऐसी विद्या है जिसके अंदर सब विद्याएं समाई हुई है. एक एजुकेशन है, इसके अंदर एक ऐसा नैतिक ज्ञान है जिससे हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति में परिवर्तन आ जाता है. योग विद्या एक ऐसे इकोनॉमिक्स को लिए हुए है जिससे मनुष्य के जीवन में सादगी आ जाती है, सरलता आ जाती है. और योग विद्या एक ऐसे साइकियाट्री, साइकोलॉजी और पैरा साइकोलॉजी को लिए हुए है जिससे हमारी मानसिक वृत्ति समाप्त हो जाती है. योग मानव को संयम सिखाता है, संतुलन आचरण में ले आता है. जो योगी इस योग को साधे, इसके जीवन में सदा ही उन्नति होती है. राजयोग चिंतन की एक ऐसी धारा है जो हमें श्रेष्ठ परिवर्तन की ओर ले जाती है. थोड़े समय के लिए हम एक अंतर यात्रा की ओर जा रहे हैं. हमारे अंदर छिपी हुई आंतरिक शक्तियों का अनुभव करने जा रहे हैं. ये क्षण मेरा अपना है, अनमोल है.
शांति से परिपूर्ण है। मैं एक अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, सत चित्त आनंद स्वरूप हूं, मन बुद्धि संस्कार सहित एक चैतन्य शक्ति हूं। दो प्रकृति के बीच में विराजमान हूं। अपने निजी स्वरूप में मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, मैं आत्मा, अचर, अमर, अनादि, अविनाशी हूं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैंने अनेक नाम रूप धारण कर पात्र निभाए हैं। मुझ आत्मा का घर परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम है। जहां शांति ही शांति, प्रकाश ही प्रकाश है, जहां मैं अपने परम प्रिय परम पिता से मिलन मना रही हूं, जो शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, गति सतगति दाता है, आप रूप में ज्योति बिंदु है, शक्ति में सूर्य समान है, आपके साथ मेरे सर्व संबंध है, आप ही मेरे माता हो, पिता हो, गुरु हो, शिक्षक हो, सखा हो, बंधु, आपसे प्रकाश और शक्ति लेते हुए मैं धन्य धन्य हूं। मैं अपने में शांति का स्रोत अनुभव कर रही हूं। शांति का अखंड प्रवाह मेरे चारों ही ओर प्रवाहित हो रहा है। संसार के सर्व आकर्षणों से पार, भव बंधनों से आजाद, देहिक संबंधों से उपराम, मैं आत्मा हूं। मैं निश्चिंत हूं, संतुष्ट हूं, निर्बंधन हूं, निर्संकल्प हूं। दिव्य ज्योतिर्मयी देह धारण कर प्रकाश, शांति, पवित्रता का शुद्ध संचार करने वाली मैं आत्मा हूं। अंतरिक्ष में विहार करने वाली मुक्त फरिश्ता हूं। अणु से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, एक अत्यंत प्रकाशमान ज्योति का एक कण हूं। ज्योति का एक निर्मल बिंदु होते हुए भी प्रकाश और शक्ति का अपार भंडार हूं। प्रकाश का पुंज हूं, मैं शांत हूं, शुद्ध हूं, ज्योति बिंदु हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।